हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 337। उन सब लोगों के वहां से निकलते ही आदित्य तुरंत ही सुनैना के हॉस्पिटल रूम के दरवाजे की तरफ मुड़ा और वहां तक आया, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही वो रुक गया। उसने जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी पत्नी को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन जिस तरह की हालत में वो उसे सुबह देखकर गया था, अब फिर से उस हालत में देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। इतनी देर के बाद तो वो यही उम्मीद कर रहा था कि अब सुनैना की हालत उस वक्त से बेहतर होगी, और जो भी लोग से मिलकर बाहर निकले थे उनके हिसाब से भी उसे यही लग रहा था। पिछले 3 दिनों तक उसके कमरे के बाहर बैठा रहा, बहुत ही उम्मीदों से उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार आज वो दिन था जब उसकी सोना अपनी लंबी कोमा से जागी और उससे बात करने वाली थी। वो अब उससे बात करना चाहता था, सुबह की तरह उसकी वैसी हालत को फिर से नहीं देखना चाहता था। और अपने मन में यही सब सोचते हुए आदित्य ने आईसीयू के दरवाजे को धक्का देकर खोला, और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने उसे वहां सामने हॉस्पिटल बेड पर आंखें खोले हुए देखा। उसका पीला और नाजुक सा चेहरा ही बता रहा है वो इन 3 दिनों में किन सिचुएशन से होकर गुजरी है, लेकिन अभी फिलहाल वो होश में है और एकटक दरवाजे से अंदर आते हुए आदित्य को देख रही है। हे, अब कैसी हो? आदित्य उसकी नजदीक आते हुए धीमी आवाज में फुसफुसाया। उसकी आवाज सुनकर ही सुनैना को न जाने कितने इमोशंस फील हो रहे हैं। उसकी पत्नी ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और आदित्य ने देखा कि उसके चेहरे पर ध्यान से देखने के लिए सामने बेड पर लेटी हुई सुनैना अपनी आंखें खोलने के लिए कितना स्ट्रगल कर रही है। और उसे इस तरह देखकर आदित्य भी धीरे धीरे उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सोना, ये मैं हूं, आदि, तुम्हारा आदि, और खुद को इतनी तकलीफ मत दो। तुम अभी बस आराम करो और अब तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी, उसने सुनैना को तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर ही आंसू बह रहे थे। सुनैना ने उसे इस तरह अपने सामने रोते हुए देखा तो उसने सबसे पहले उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे उठने से मना करते हुए कहा, नहीं सोना, लेटी रहो, तुम अभी तुम्हारे सर की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इतना बोल के आदित्य ने उसे वापस लेटने के लिए मना लिया, उसे याद दिलाया कि उसे आराम की जरूरत है। सुनैना दोबारा से वापस लेट गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली हुई हैं और वो आदित्य की तरफ देख रही है। वो दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, जबकि आदित्य ने बस उसकी ओर देखा। उसके बिना मेकअप के अनफिल्टर्ड चेहरे की सुंदरता को, क्योंकि इस वक्त बहुत ही नेचुरल और ब्यूटीफुल लग रहा था। भले ही 3 दिन से हॉस्पिटल में रहने की वजह से वो थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी सुनैना आदित्य की नज़र में इस वक्त सबसे खूबसूरत लड़की है। और ये सब सोचते हुए आदित्य बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया और दोबारा उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो सुनैना के सामने रोककर उसे भी कमजोर नहीं करना चाहता। सुनैना ने उसे इस तरह दूसरी तरफ चेहरा करते हुए देखकर कहा, क्या हुआ आदि, प्लीज मेरी तरफ देखो, तुम रो रहे हो ना, तुम इस तरह मुझसे अपने आंसू इमोशंस नहीं छुपा सकते, कभी भी नहीं। उसकी बात सुनकर आदित्य ने जल्दी जल्दी अपने सारे आंसू पोंछ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं, मैं नहीं रो रहा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम होश में हो और मुझसे बात कर रही हो। पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इन 3 दिनों में। इतना बोलते हुए आदित्य ने सुनैना का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर सुनैना भी इमोशनल हो गई, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाई। उसे कुछ भी याद नहीं कि इस दौरान क्या हुआ। उसे आखिरी बात बस इतनी याद है कि उसके सिर पर कोई भारी चीज लगी थी और उसके बाद आंखों के नीचे एकदम अंधेरा छा गया था, और तब से आज सुबह उसकी आंख खुली तब उसने आदित्य को देखा, और उसके बाद दोबारा खुली तो डॉक्टर और नैना को, लेकिन तब से उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की और अब वो सिर्फ आदित्य से ही बात कर रही है। आदित्य ने झुककर धीरे से उसके माथे को चूमा, जिससे उसकी रीढ़ को ठंडक पहुंची। वो फिर पीछे झुक गया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोना, आई लव यू सो मच, और तुम नहीं समझ सकती तुम्हें इस हालत में देखकर इतने दिन मुझ पर क्या बीती है, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, सिर्फ इतनी कि सुनैना को ही ये सुनाई दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदि, और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सुनैना ने जवाब दिया, और वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। खुशी के आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे और आदित्य ने हल्का सा झुककर सुनैना को गले लगाया तो सुनैना के आत्मे भी आदित्य की पीठ पर कस गए। सुनैना तो उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं थी, लेकिन आदित्य ने खुद ही सुनैना का हाथ अपने ऊपर से हटाया और फिर थोड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, इतना प्यार दिखाने की भी जरूरत नहीं है, पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ, और वैसे भी क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में आने की, तुम इंसान हो, कोई शील्ड नहीं। सुनैना दबी आवाज में सफाई देती हुई बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बस तुम्हें बचाना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ऊपर भी हमला कर देगा, लेकिन वो सब। उसकी सफाई सुनकर आदित्य फिर से बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ ठीक है, अब ज्यादा सफाई मत दो, तुम्हें नहीं पता कि पिछले 3 दिनों से मेरी क्या हालत थी, ऊपर से ये सोच सोच कर कि मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ, आदित्य भी वो विराज मुझे ही मारने वाला था, उसका टारगेट मैं था, तुम कभी नहीं, आइंदा से कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी। आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुनैना ने बीच में बोला, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ आदित्य, प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद करो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम हर चीज के लिए खुद को ब्लेम नहीं करोगे, तो फिर क्यों, और वैसे भी ये सब उस विराज ने जानबूझकर किया है और सब उसकी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी ही गलती है इन सब में और किसी की नहीं। सुनैना ने एक साथ इतना कुछ बोला तो फिर से उसकी सांसें थोड़ी भारी होने लगी, तो आदित्य उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर नहीं अपना सिर लिलाते हुए बोला, बस करो, चुप हो जाओ, अच्छा ठीक है, मैं नहीं कर रहा खुद को ब्लेम, लेकिन तुम प्लीज ज्यादा मत बोलो, मैं समझ गया तुम्हारी पूरी बात। फिर सुनैना ने उसकी बात सुनकर कुछ देर तक नहीं बोली और बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन कुछ देर के बाद उसे कुछ याद आया तो उसने हल्के से अपने होंठ हिलाते हुए एकदम धीमी आवाज में पूछा, आदि विराज वो? सुनैना के इस सवाल पर आदित्य ने घूर कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली सोना, तुम्हें अभी भी उस आदमी की चिंता है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया? इस पर सुनैना ने जल्दी से कहा, नहीं मैं तो बस ये पूछ रही हूं कि वो बचकर भाग तो नहीं गया ना, उसे पुलिस के हवाले कर दिया ना तुमने? सुनैना के इस सवाल पर आदित्य सोच में पड़ गया और उसे समझ नहीं आया कि वो सुनैना को क्या जवाब दे, क्योंकि इस वक्त वो उसे सच भी नहीं बताना चाहता और झूठ भी नहीं बोल सकता। इसलिए थोड़ा सोचते हुए आदित्य ने एकदम सीरियस होकर कहा, हाँ वो वहीं पर है जहां पर उसे होना चाहिए। आदित्य की इस बात पर सुनैना ने तसल्ली से मुस्कुराया, क्योंकि उसने यही समझा कि जरूर विराज को पुलिस पकड़कर ले गई है या फिर आदित्य ने खुद ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया होगा, और ये सब सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। उसे स्माइल करते देख आदित्य ने उससे पूछा कि कैसा फील कर रही हो अब, तो सुनैना ने कहा, ठीक है, सिर थोड़ा सा भारी है बस।
इस पर आदित्य ने कहा, हाँ सिर पर ही तो इतनी भयानक चोट आई है और शायद इसीलिए, बट तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना और कुछ भी मत सोचना, सब कुछ ठीक है और मैं यही हूँ तुम्हारे पास। आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना ने स्माइल करते हुए अपनी पलकें झपकाईं। जैसे ही बातचीत समाप्त हुई आदित्य भी उसका हाथ पकड़े हुए उसके साथ ही अस्पताल के बिस्तर पर उसके बगल में लेट गया। सुनैना ने भी उसके हाथ में अपनी उंगलियां फंसा लीं और फिलहाल के लिए वो दोनों बस एक दूसरे के साथ में ही में संतुष्ट और खुश है। सुनैना पर ये इतना बड़ा हमला उन दोनों के लिए ही एक बहुत बुरे सपने जैसा था, लेकिन ना सिर्फ उन दोनों को फिर से साथ और एक दूसरे के करीब लाया था, बल्कि उन दोनों को एक दूसरे के लाइफ में एक दूसरे की अहमियत भी समझा गया था, और एक दूसरे को खोने के डर की वजह से उनका रिश्ता आज शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत है। सुनैना को अपनी बाहों में लिए आदित्य तब तक उसके पास वहां पर लेटा रहा जब तक डॉक्टर ने आकर उसे इस बारे में उसे बाहर जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि विजिटर आवर्स खत्म हो गए थे और आदित्य ने भी कोई बहस नहीं की, क्योंकि अपनी जिद की वजह से वो सुनैना के ट्रीटमेंट में कोई भी अड़चन लाना नहीं चाहता, इसीलिए वो डॉक्टर की बोलते ही चुपचाप उठकर बैठा। उसने सुनैना की नज़रों को खुद पर नोटिस किया और हल्के से अपने हाथों को उसके हाथों से अलग किया। सुनैना भी उसकी तरफ देख रही है। आदित्य ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा और बाहर जाने से पहले मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आदित्य जब बाहर आया तो उसने देखा कि अनय पहले से ही वहां पर उसका इंतजार कर रहा था, और अनय को देखते ही आदित्य खुश होकर भागते हुए उसे गले लगाने के लिए आगे आया, क्योंकि सुनैना ने आज इतने दिनों के बाद उससे बात की, साथ ही वो पहले से काफ़ी ठीक लग रही है, उसकी हालत में सुधार है और अपनी ये खुशी को सबसे पहले अनय के साथ ही शेयर करना चाहता है। चेहरे पर स्माइल के साथ आदित्य जैसे ही वहां आगे आया उसे अनय के साथ ही किसी और के भी वहां पर होने का एहसास हुआ, और उसने थोड़ा सा और आगे आकर देखा तो उसे अनय के पीछे खड़ी हुई मनस्वी नजर आई, जो अनय के लेफ्ट साइड में ही थोड़ा सा ही पीछे होकर खड़ी हुई थी, और मनस्वी को वहां पर देखकर आदित्य अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने अनय को गले भी नहीं लगाया और अपने हाथ पीछे कर लिए। मनस्वी को देखते ही आदित्य के रिएक्शन में आए ऐसे चेंज देखकर अनय के चेहरे पर भी मायूसी नजर आने लगी, और उसने आदित्य से पूछा, क्या हुआ यार, अभी तो तू इतना खुश था,
अभी एकदम से उसकी बात का जवाब देते हुए आदित्य बोला, खुश तो मैं इसीलिए था क्योंकि मेरी सोना को होश आ गया है और उसने मुझसे बात की। अभी तक मैं उसके साथ ही था और यही बात तेरे गले लगकर तुझे बताने भी वाला था, लेकिन फिर किसी को देखकर मूड खराब हो गया। क्रमशः